सत्यता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो,
योगी बनो पवित्र बनो।
शिव का अर्थ कल्याणकारी इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो,
योगी बनो पवित्र बनो।
माता पिता
ओम शांति। आज का विषय है हॉनेसी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। ईमानदारी लौकिक और अलौकिक और हर जगह पे ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो सच्चा होता है और उसमें कपट नहीं होता है, झूठ नहीं होता है, सभी को समान रूप से मदद करता है। ईमानदारी कोई समय का मोहताज भी नहीं, परिस्थितियों का भी मोहताज नहीं होता है। हर परिस्थिति में निडर बन के ईमानदारी से हर पहलू का वो इस्तेमाल करता है। तो ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और ईमानदारी रखने से फायदा क्या है? सबसे पहला तो स्वयं को फायदा होता है, स्वयं खुश मिजाज रहता है और स्वयं तनाव मुक्त भी रहता है, क्योंकि उसमें झूठ नहीं होता है, इसलिए हर बात उसकी सच्ची होती है, तो उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और ईमानदार व्यक्ति होता है तो हर परिस्थिति का सामना करने से वो धीरे धीरे निडर भी हो जाता है। तो ईमानदारी में समाज को भी फायदा होता है, स्वयं को भी फायदा होता है और उसके जो संबंध संपर्क में आते हैं उसको भी फायदा होता है। ईमानदार व्यक्ति हर एक से सम्मान प्राप्त करता है, हर एक से आदर प्राप्त करता है और समाज का बहुत बड़ा गुण है, वरदान है कि ईमानदार रहना। तो ईमानदारी का बहुत ही इस समाज में जरूरी है। जैसे सतयुग में हम थे तो ईमानदार थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, सर्वशक्तियों से भरपूर थे, लेकिन नाम नहीं था ईमानदार, लेकिन थे, 16 कला संपूर्ण थे और अभी हम बन रहे हैं, रास्ते में हैं हम। तो ईमानदार पापर युग में धीरे धीरे हमारी कलाएं जैसे जैसे कम होती गई वैसे ईमानदारी की परसेंटेज कम होती गई है। तो ईमानदारी का फायदा तो बहुत है, लेकिन जो बेईमान होकर के रहते हैं उसे लोगों को अल्पकाल के लिए तो फायदा पहुंचता है अल्पकाल के लिए, लेकिन उसका परिणाम फिर बहुत ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो मान शान के कारण या तो अपने को आगे बढ़ाने का काम तो कर लेता है, उसमें बहुत कुछ कपट भी आता है, चालाकी भी आती है, लेकिन आखिर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता है। और ईमानदार व्यक्ति होता है धीरे धीरे, धीरे गति से भी चलता है भले, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसी ईमानदारी हम कैसे लाए हमारे जीवन में? वो बचपन से ही अगर हमारे माता पिता ईमानदार है, आसपास वाले ईमानदार होते हैं, तो हम भी उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो संग बहुत ही जरूरी है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी हमने देखा कि जब भी वो चाचा की दुकान पे बैठता था तो तोल माप बराबर करता था, कभी कम नहीं देता था, और वही ज्यादा कभी होता था लेकिन कम तो होता ही नहीं था। उसी कारण से देखो बाबा ने उसको पसंद भी कर लिया और बाबा ने उसमें प्रवेश करके सब काम भी करा दिया। तो ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। तो हमारे जीवन में अभी ईमानदारी लाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि इतना सहज नहीं है कि हर जगह पे हर पहलू पर हम सत्य बोले झूठ नहीं बोले, थोड़ी थोड़ी चालाकी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए यहां ईमानदारी, अगर कलयुग में ईमानदारी चाहिए तो बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा, अपने को दृढ़ता से दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि हमें ईमानदार रहना है। और छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं तो हम बड़ी बातों से भी ईमानदारी रख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें संबंध संपर्क में आते हैं, परिवार में आते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं ईमानदारी रखने का, सच बोलने का, तो धीरे धीरे हम बड़े पैमाने पर भी ये ईमानदारी रख सकते हैं। उसके लिए हमारी ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उसमें बाबा कहते हैं कि ईमानदार तो बनना ही है लेकिन सबसे पहले दिल साफ होना चाहिए। जैसे कोई जगह ऐसी होती है ना, हम साफ करके बैठते हैं, गंदगी में नहीं बैठ जाते हैं, इसलिए दिल साफ होगा तो हम धीरे धीरे ईमान की जगह पे रह सकेंगे। तो दिल साफ माना कि हमारे अंदर कोई विकार का किचड़ा नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का किचड़ा तो है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके पर विजय प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। तो अगर हमारे में कोई भी प्रकार का अगर विकार होगा तो हमारा दिल साफ नहीं हो सकता है। तो दिल साफ करने के लिए, क्योंकि बाबा कहता है मैं जहां जगह साफ होती वहां बैठता हूं, तो भगवान को हमारे दिल में बिठाना है तो फिर वो और कोई गंदगी नहीं चाहिए। तो दिल साफ। दूसरा है कि सच्चा दिल। सच्चा दिल माना, सच्चा दिल और साफ दिल में बहुत अंतर है। सच्चा दिल माना सच्चे साहिब के साथ हम सदा सच्चे रहे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा के साथ हम देखते हैं कि बाबा तो परमधाम में बैठा है, यहाँ छोटी छोटी बातों में क्या है, आएगा टाइम तो हम देख लेंगे, तो हम धीरे धीरे अपना जो थोड़ा थोड़ा मिलावट भी कर देते हैं। हम देखते हैं कि सब वो तो करते हैं, ये करते हैं, हम करते हैं, इसमें क्या हो गया, तो हम दूसरों को देखने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा सच्चा दिल नहीं होता है। सच्चा दिल माना, बाबा ने कई बार कहा है कि जब भी आप बाबा के पास आते हो तो आपकी सच्ची सच्ची जीवन कहानी एक बार बाबा को दे दो। तो सच्ची जीवन कहानी लिखने से बाबा हमें माफ तो नहीं करेगा लेकिन इतनी शक्ति देगा, फिर से हम ये सब काम नहीं कर सकते, बोझा हल्का हो जाएगा। लेकिन तो हमें क्या करना चाहिए कि दिल सच्चा, सच्चे सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। इसलिए कहते हैं सच तो बीठो नच, सच्चे साहिब के साथ अगर हम सच्चे रहेंगे तो धर्मराजपुरी से हम बच जाएंगे। तो जो भी हमारे से गलतियां, बाबा ने बोला था एक मुरली में कि तुम 20-25 गलतियां तो रोज कर लेते हैं, तो हम अगर हमारे पर थोड़ा सा अटेंशन रखे और जो भी हमारे जीवन में होता है वो हम बाबा को बताते रहे, तो बाबा तो इतना रहमदिल भी है कि हमें ऐसी युक्तियां बताएगा जिस युक्ति से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दिल साफ और दिल सच्चा, तीसरा है रहमदिल। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो बाबा के बच्चे बन गए, हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन कई जो आते हैं वो संसार के दुखों से दुखी है, संसार की जालों में फंसे हुए हैं, पुराने संस्कारों से फंसे हुए हैं, और वो जब आते हैं तो हम उनको देखते हैं कि ये देखिए कैसा है। बाबा कहते हैं उस जैसे मैंने आपके पर रहम की है वैसे आप भी उन बच्चों से रहम करो, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा है। तो रहम करना इसका मतलब, कई बार हम कहते हैं गुस्सा भी आ जाता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो बेचारे नए नए आए हैं और संसारों की जालों में फंसे हुए हैं, बुरे संस्कारों में फंसे हुए हैं। तो बाबा के घर में आएंगे, हमारे संबंध संपर्क होगा, अगर हम ही गुस्सा करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा कहते रहमदिल बनो, लेकिन रहमदिल बनने के पहले बाबा कहते आप खुद स्वयं पर रहम करो। तो स्वयं पर रहम कैसे करेंगे, जब हम ही विकारों से मुक्त नहीं होते हैं तो रहम कैसे करेंगे। इसलिए बाबा कहते पहला पुरुषार्थ है कि हम स्वयं पर रहम करें। तो स्वयं पर रहम करना माना हमारी जो गलतियां होती है, हमारी कमजोरियां होती है, उस पर हम ध्यान दें। चौथा है फराक दिल। फराक दिल माना बड़ा दिल, कभी छोटी छोटी बातों में मुरझाई सो जाता है, कभी कुछ ने कुछ बोल दिया तो हम नाराज हो जाते हैं, कभी कुछ किसी को देना होता है तो हम कंजूसाई करते हैं, अपने वालों को देते हैं दूसरे वालों को नहीं देते, यहां भी हम मतलब कि ऐसे खुटबाजी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे तो सारे परिवार है, ईश्वरी परिवार है, आप ऐसे क्यों नहीं समझते कि हम सभी आत्मा एक ही पिता के संतान है। अगर हम ऐसे समझेंगे तो सभी से हम ऐसे समान भाव से देखेंगे, नहीं तो क्या होता है हम ढूंढने लगेंगे भाई किसको देना है, हमारे वाले कहां बैठे हैं। तो ये बाबा कहते हैं इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे वो संस्कार से बस, क्योंकि वो बाबा कहते हैं कि वो जो देहधारी थे उसको तो हमने परिवार को तो छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ एक नया परिवार बनाते हैं, किसी को माँ बनाते, किसी को बेटी बनाते, किसी को भाई बनाते हैं। बाबा कहते मैं ही पिता हूँ और सभी आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तो हमें यहाँ किसी को माँ नहीं बनाना, कोई को बेटा नहीं बनाना है, किसी को बहन नहीं बनाना, किसी को भाई नहीं बनाना है, इससे हम बचे। तो रहमदिल इस प्रकार से नहीं करना है कि रहमदिली करके चलो ये मेरी बहन है उसको मैं देता रहूं, तो फंस जाएंगे अंदर। इसलिए अपने पर स्वयं पर पहले तो रहम करना है। तो अगर दिल हमारा इस प्रकार से होगा तो बाबा कहते हैं कि हम ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर ईमानदार रहना है तो कुछ कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है और कुछ कुछ हमारे जीवन में नियम अपनाने पड़ते हैं। इसकी एक कहानी आप सबने सुनी भी होंगी लेकिन मैं अब थोड़ी दोहराती हूँ। कहते हैं कि एक गरीब था, बहुत गरीब था, अपना परिवार का पोषण करने के लिए वो लकड़ी काटता था। तो लकड़ी काटते काटते एक बार उसकी बहुत ही पुरानी कुल्हाड़ी वो पानी में गिर गई, नदी में गिर गई। तो वो किनारे पर रोते हुए बैठा, बहुत रोने लगा, भगवान को याद करने लगा। तो भगवान नदी में से बाहर दर्शन दिया, उसको बोला क्यों रोता है, तो उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी अंदर चली गई है। तो उसने बोला ठीक है, तो एक डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई उसको। तो चांदी की कुल्हाड़ी देख करके वो बच्चा कहता है ये मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की है। तो फिर देवता भी ऐसा था, एग्जाम ले रहा था, परीक्षा ले रहा था, तो उसने फिर से डुबकी लगाई, सोने की बहुत चमकती हुई सोने की निकाली, बोला ये तो तुम्हारी ही है। बोला नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तो फिर कहता है तो तुम्हारी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। फिर तीसरी बार डुबकी लगा कि उसके लोहे की जो पुरानी थी वो दिखाई, बोला ये मेरी है। तो उसको प्रसन्न हो गए कि देखो कितना ईमानदार है। कि तो तीनों ही कुल्हाड़ी उसको दे दी। फिर घर में जब आया, बाजू वाले ने देखा कि ये तो सोने की चांदी की और सभी कुल्हाड़ी देकर के आया है। तो वो भी गया पुरानी कुल्हाड़ी कहीं से लेकर के, और फिर उसने ऐसे अपने आप ही डाल दिया। तो फिर बहुत रोने लगा। तो भगवान तो दया का सागर है, वो तो आ गया और उन्होंने को बताया कि ये तुम्हारी है। तो बोला कि नहीं, ये मेरी नहीं है, कुल्हाड़ी चांदी की दिखाई, तो बोला ये मेरी नहीं है। फिर बोला तो दूसरी सोने की बहुत चमकती हुई दिखाई, तो कहता ये मेरी है। तो भगवान ने डुबकी लगाई, अदृश्य हो गया और रोते हुए बैठा कि ऐसे कैसे हो गया, उसको मिल गई, मेरे को नहीं मिल गई। तो ईमानदारी रखने से इतना फायदा है और बेईमानी होने से इतना क्या फायदा होता है। तो यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमको, मतलब कि बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमको एक रोशनी दिया है, रोशनी माने प्रकाश। नहीं, कोई बात होती है तो कैसे नहीं इसके ऊपर प्रकाश डालिए, मतलब कि थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो बाबा ने हमें इस यज्ञ में, हम बाबा के बच्चे बने तो हमको बहुत प्रकार की रोशनी दी है। जैसे दुनिया में भी रोशनी होती है ना, बत्तियां होती है ना, लाल कलर की बत्तियां होती है, हरे कलर की बत्तियां होती है, लेकिन उसका यूज अगर नहीं आया तो क्या होगा। तो अगर लाल बत्ती जल रही है ट्रैफिक में और हम किसी की गाड़ी लेके गए और सामने से गाड़ी चल रही हमारी भी, तो क्या होगा, दोनों अस्पताल में जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमको हर प्रकार की बत्तियां दी है, लेकिन कब बत्ती कब यूज करनी है वो हमें बाबा वो भी सिखाते हैं। तो यहाँ हमको बाबा ने समझ दिया है, ज्ञान दिया है। तो सबसे पहले जब भी अमृत वाले योग होता है तो हम क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं और देखते हैं कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन होना चाहिए, लेकिन हमारा अटेंशन हमेशा कहाँ होता है, दूसरे के पर होता है। बाबा ने एक बार बोला एक घंटा बैठते हो लेकिन 15 मिनट में आप अपने को चेक करो कि आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। जितना समय बाबा की याद में होंगी, कितना समय हमारा कनेक्शन होगा, उतना ही हम अपने को चार्ज कर सकेंगे। भले आप 2 बजे से बैठो, 3 बजे से बैठो, 4 बजे से बैठो या कि रात बैठो, सारी रात बैठने से भी ऐसा नहीं है कि विकर्म विनाश हो जाएगा। बाबा कहते, कोई कहते मैं 5 घंटा 6 घंटा बैठता हूँ, बाबा नहीं मानता है, क्योंकि कनेक्शन जितना होता है उतना ही हिसाब चुकत होता है। तो मतलब कि योग, तो हमारा सुबह में जब उठते हैं तो हमारा अटेंशन बस एक ही बात पर होना चाहिए कि हमारा बाबा से कितना समय अटेंशन वहां रहता है, परम धामों को दिखाई देता है, बाबा की किरणें दिखाई देती है, बाबा की किरणें हमारे पर आती है। तो ये सारी बातें जब हम अटेंशन ध्यान करते हैं तो हमारी शक्तियां, बाबा कहते हैं कि मैं शक्तियां देता हूँ, मैं हर प्रकार के गुण देता हूँ। ये सब क्यों देता हूँ, क्योंकि आप है ना तो गुणवान बन जाओ। तो ज्ञान में क्या करते हैं हम, बाबा कहते हैं मुरली जब सुनते हैं तो सबसे पहले तो मुरली के पहले योग होता है कि आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। और हम अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, अपने को ज्योतिर्मय बिंदु और परमात्मा को मतलब कि याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं तो सही रीत है। लेकिन मुरली जब चलती है तो क्या करते हैं, जब कोई पॉइंट्स आती है ना तो हम दूसरे पर इशारा करते हैं, देखो इसके ऊपर चली, इसके ऊपर चली। तो मुरली जिस भाव से चलती है, बाबा जिस भाव से हमको समझाना चाहता है और जिस पर बाबा भाव उसको वजन देता है, उस बात को हमें पकड़ लेना चाहिए। अगर हम उसी रीति से मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या होगा कि मुरली सुनी नहीं सुनी एक ही है, याद रह जाएगी। लेकिन जो भाव से हमको समझना चाहिए, बाबा जिस प्रकार से हमको कहना चाहता है वो हम नहीं समझे तो क्या होगा। एक बार हमारे टेलीफोन एक्सचेंज में है ना एक मुरली चली थी, उसके बाद एक माता आई थी। बाबा ने बोला कि देखो बच्चे अभी मेहनत करने की जरूरत है, मोहब्बत करो बाबा से। तो घर में फोन करके कहती है उसके पति को कि बाबा ने कहा है मोहब्बत करो, मेहनत की जरूरत ही नहीं है। तो हमने बोला ऐसा क्यों बोलते हो, बाबा से तो मेहनत तो पड़ती है। बाबा ने बोला मोहब्बत करो, तो मोहब्बत करने में भी बाबा कहते हैं कि मोहब्बत ऐसी करो जबको मेहनत लगे ही नहीं। लेकिन कई बार हम जो बाबा समझाते हैं उसको हम बराबर समझते नहीं, उसका भाव नहीं समझते हैं और मूल्य सुनते रहते हैं, तो हमारे जीवन में फिर वो धारणा नहीं आती है। बाबा कहते हैं कि आप ज्ञान धन है, जैसे वो धन है ना, वो धन ऐसे ज्ञान धन है ना, वो सुख स्थूल धन को भी हमारे पास खींच के लाते हैं। जितना जितना ज्ञान धन होगा, आप देखना कि कोई कितना भी गरीब होगा, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान धन उसके जीवन में आते जाएंगे, वो स्थूल रूप से भी बहुत ही धीरे धीरे साहूकार बन जाता है। उसकी एक कहानी सुनाती हूँ कि मैं जब ये अहमदाबाद में राजयोग भवन में थी, तो क्या है कि हमारे सामने एक भाई था, तो एक छोटी दुकान चलाता था, दो दो रुपया की चीजें पतरे की स्टील की मिलती थी तो देता था। तो एक बार हमारी एक दूसरी बहन थी ना, वो उसके पास एक बर्तन लेने गई थी, उसको बोला कि भैया आप यहाँ इतने घंटे खड़े रहते हो, आप एक काम करो ना, आप यहाँ आओ ना राज्योग में थोड़ा सीखो ना। बोला बहन जी मेरी ये इस दुकान का क्या होगा, मेरी तो ये रोज की रोजगारी क्या होगी, मुझे तो ये घाटा पड़ जाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, एक भाई को हम बोलते हैं कि आप आधा घंटा। तो उसने पहले दिन सुना तो उसको फिर बहुत चिंता होती थी दुकान की, क्या होगा क्या होगा। फिर वो बहन ने उसको समझाया आपकी दुकान में से कुछ भी नहीं लेंगे, चिंता नहीं करो। फिर उसने धीरे धीरे कोर्स शुरू किया, एक कोर्स शुरू करने के बाद रेगुलर बन गया, और रेगुलर बन गए कि वो उसकी दुकान तो वहां से हट गई। लेकिन 10 साल के बाद वो फिर से आया, तब बोलता है राजयोग भवन में, उस सब इनको बोलता है मुझे पहचाना। बोला नहीं मैंने नहीं पहचाना। बोला आपने नहीं पहचाना मुझे, वो सामने में था अभी मेरी है ना, तो 3 मंजिल की दुकान स्टील की और वो सूरत में है, ऐसा बोला। तो बोला अच्छा आप वही हो। बोला मैं वही हूँ। तो ये ज्ञान धन जो है ना, उस स्थूल धन को भी लाती है। तो बाबा ने कहा है कि हमको बाबा ने ज्ञान रत्न इतना दिया है, इतना दिया है, तो हमको कलेक्शन करना चाहिए। कलेक्शन कलेक्शन माना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माचिस के बॉक्स होते हैं ना, वो कलेक्ट करते हैं। कोई सिगरेट के बॉक्स होते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, और उसका उसकी कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। कोई कॉइन करते हैं, ग्रीनिश बुक में हमारा नाम आ जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और छोटी छोटी चीजों को संग्रह करते हैं। बाबा कहते कलेक्शन माना कि हमें जो बाबा ने ज्ञान रतन धन दिया है उसका अच्छे अच्छे जो कलेक्शन है वो करते रहो। करने के बाद क्या करना है, कलेक्शन तो कर लिया, उसके बाद बाबा के करेक्शन करो कि हमें इतना ऊंच बनना है, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, हमें सर्वशक्तियों से भरपूर करना है अपने को, और ईमानदार बनना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो जो करेक्शन जो है ना, कि जो हमारी कमियां क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, तो कमियां और कमजोरियों को और हमारा संपूर्ण स्वरूप को आप कंपेरिजन करो, तो धीरे धीरे हम क्या होता है हमारे में, धीरे धीरे हम हमारी कमी और कमजोरी को महसूस करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन तो कर लिया कि हमारे में क्या कमी है क्या नहीं है, महसूस भी होने लगा है, लेकिन उसके साथ साथ शिव बाबा से कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन नहीं है तो, कनेक्शन नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं। इसलिए बाबा से कनेक्शन रखो। जो सारे दिन में हम जो भी लोगों से बातें करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे से जोड़ के रखो, जो भी छोटी छोटी बात भी मुझे बताओ। आप दूसरों को बताने जाते हो कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे बताओ कोई भी कैसी भी बात हो। जैसे आज अमृत वेले उठे, आज हमने क्या क्या किया, सारी दिनचर्या जैसे हम कोई व्यक्ति को बताते हैं ना, भाई आपने क्या क्या किया, तो हम बताते हैं आज हमने ये किया ये किया, तो बाबा को भी बताओ सुबह से उठ करके रात तक जो भी बातें आपके जीवन में आती है, अच्छी आती है बुरी आती है, जो भी बातें आती है वो बाबा से शेयर करो, तो क्या होगा। कभी कभी आपने देखा एक साल व्यक्ति मिलते हैं ना, तब हम कैसे मिलते, हाई हलो करते हैं, हाई और हलो उसके सिवाय दूसरा नहीं। लेकिन कोई 6 मास में मिलते हैं तो थोड़ा लगता है कि ये भाई 6 मास के पहले आया था, तुम थोड़ा उससे पूछते भाई कैसे हो, खुश राजी हो, ये सब। एक एक मास में जो मिलते हैं उसको थोड़ा और पूछते, लेकिन रोज जो मिलते हैं परिवार में, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या हुआ आज, क्या हुआ, सब पूछते हैं। नहीं खाया होगा तो पूछेंगे भी आज का मुंह आपका कैसा ऐसा है, खाया नहीं है क्या, कितना पूछते हैं हम। तो बाबा कहते मुझे भी आप रोज रोज सब बातें बताओ। जितनी बार आप मुझे मिलोगे, जितनी बार मुझे बातें बताओगे, तो बताते बताते आपका कनेक्शन कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो कनेक्शन, तो पर बाबा से कनेक्शन, लेकिन स्वयं से भी कनेक्शन होना जरूरी है। स्वयं से कौन सा कनेक्शन, क्योंकि हम स्वयं का कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों से है। संबंध और संपर्क में जब भी हमारे लोग आते हैं, संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो संबंध संपर्क में आते हैं, दैवी परिवार में हम आते हैं, तो जब बाबा से हम जुड़ जाते हैं तो परिवार से भी हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा स्रोत क्या है कि शिव बाबा है, शिव बाबा से हमें लेना है और औरों को देना है। तो बाबा कहते हैं कि ये बाबा से हम लेंगे और सबको देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम बाबा से लेना भूल जाते हैं और लोगों से फिर चाहना करते हैं, तो क्या होता है, वो तो थोड़ा सा ही देते हैं, लेकिन भगवान जो देगा वो तो बहुत मालामाल कर देगा। तो भगवान जो देता है उसको दाता के रूप में हम देखते हैं, तो बाबा तो देने वाला ही है। इसलिए हमें अपना जो कनेक्शन है वो ऐसा रखना चाहिए, एक तो दो बातों से रखना चाहिए, एक तो आदि स्वरूप से रखो, आदि स्वरूप हमारा जो मूल गुण है, प्रेम है, सुख है, शांति है, आनंद है, वो हमारा ओरिजिनल गुण है। जब हम परम धाम में थे तो भी हमारा यही गुण थे, और जो हमारा ओरिजिनल गुण है वो 100% था, तो हम मूल वतन में कितने सुखी थे, हमारी बैटरी कितनी चार्जेबल थी। तो हमारी बैटरी चार्जेबल करने का एक ही उपाय है कि हम अपने मूल जो गुण है उसमें स्थित रहे, और उसमें जब स्थित रहते हैं तो हमारा कनेक्शन उसमें रहता है, तो हमारे पर थोड़ा ध्यान भी रहता है कि आज प्रेम में क्या गड़बड़ हुई, कि आज क्या क्या हुआ सब। दूसरा है कि अनादि आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप मीन्स कि हम यहाँ तो 2500 साल तो देवी देवता रहे, 2500 साल, और परमधाम में भी हम पवित्र ही थे, तो हमारा आदि स्वरूप जो था और अनादि स्वरूप था, अनादि स्वरूप जो था वो बाबा कहते हैं कि उसको याद करो, उसके साथ कनेक्शन रखो। और बाबा नहीं कहता स्वर्ग के महल देखो, कहते हैं ना स्वर्ग के महल देखो, आपके महल कैसा बनेगा, आप यहाँ कुछ भी देखते हो तो तुरंत महल को याद करो, हमारा महल कैसा बनेगा। बाबा कहते जो महल में रहने वाले होंगे उसको ये संकल्प आएगा, इसलिए हम महल में रहने वाले हैं तो हमारे को तो ये संकल्प करना ही चाहिए कि हमारा महल कितना बड़ा बनेगा। तो एक बहन हमारे पास आई थी तो मुझे कहती कंप्यूटर में मुझे महल बताओ, मैं कि क्यों, कहते नहीं थोड़ा देखते हैं ना तो फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा महल कैसा होगा, इसे हम बड़ा करें ना, क्यों हम छोटा करें, इसलिए हम इसे बड़ा कराना चाहते हैं ना, इसलिए हम देखना चाहते हैं। हमने उसको लिखा ना पैलेस, तो बहुत सारे महल आ गए, हमको भी मजा आ गई थी। तो कहने का मतलब कि ये तो महल कुछ भी नहीं है, बाबा के महल तो बहुत ही, बाबा तो जो हमें देने वाले हैं वो तो बहुत ही अच्छा। तो बाबा कहते राजधानी को याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो स्वर्ग को याद करना, राजधानी को याद करना, और अपने आदि अनादि स्वरूप जो हमारा मूल गुण है, मूल स्वरूप में स्थित होना, उस दोनों से कनेक्शन रखो। दोनों से कनेक्शन जब रखेंगे तो यहाँ के द्वापर और कलयुग के संस्कार जो है ना, जो हमारे पर हावी हो गए हैं, उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो देखते देखते हमें क्या होगा कि यहाँ के जो भी द्वापर युग में, तो बाबा कहते हैं कि वो तो चलो चला गया, लेकिन कलयुग में जो हम रहते हैं तो ये कलयुग संसार कैसा है, बाबा कहते हैं कि कलयुगी संसार कैसा है, बहुत आकर्षण करने वाला है। बाबा कहते हैं कई बार सोने की जो चीजें होती है ना वो इतना आकर्षण नहीं करती, लेकिन डुप्लीकेट जो होती है ना वो बहुत ही आकर्षण करती है। बाबा कहते हैं कि सोने की चीज आकर्षण इसलिए नहीं करती है क्योंकि अभी कलयुग में पॉम्प है माया का। माया कहती है कि मेरे हाथ से सब जा रहे हैं, मैं जाने ना दूं, इसलिए क्या करते हैं, इतनी आकर्षण, इतना आकर्षण, पहले इतना मॉल नहीं देखा था, अभी देखो कलयुग में आप कहीं भी जाओगे मॉल पे मॉल, इतने मॉल और इतनी सारी सारी चीजें और इतनी चमकदार चीजें, तो आपको ऐसा लगेगा क्या लूं क्या ना लूं। तो बाबा कहते हैं कि कलयुग का ये जो है, कलयुग में हमें है ना, तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हमें दो बातों पर कनेक्शन बराबर रखना है, और आदि और अनादि स्वरूप जब भी हम अपने बुद्धि में लाएंगे, जब भी चलते फिरते जो भी चीजें हम देखते हैं उसे लौकिक में अलौकिक में हम परिवर्तन करेंगे, तो हमको परिवर्तन करते करते ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन देखो कितना अच्छा बन गया, अभी मुझे इसकी एक बात याद आती है कि ये सायन में है ना संतोष बहन, उसके उसके साथ भाई था, यानी तीन भाई था वो है ना, तो एक बार एक सेवाधारी उसके पास सेवा करने आया ना, तो उसको बोलता है कि ए 84 की सीढ़ी, जो 84 की सीढ़ी लाओ। तो उसने बोला कि एक चित्र लेके आया, बोला ये चित्र नहीं वो सीढ़ी, उसको हम 84 की सीढ़ी कहते हैं। फिर वहां फैन फिट करना था, बोला स्वदर्शन चक्र लाओ। तो भाई कहता है कैसे आप बोलते हो, स्वदर्शन चक्र तो कहाँ है, बोला ये जो है ना पड़ा है ना। तो हर चीज को मतलब कि लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करने का उसकी आदत हो गई थी और सभी समझ गए थे और सभी को अच्छा भी लगता था कि देखो कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं। तो हमें हमारी जो भी संगम युग में हम बैठे हैं, संगम युग माना क्या, आधा कलयुग आधा सतयुग उसके बीच में बैठे हैं, कभी यहाँ का आकर्षण कभी यहाँ का आकर्षण होता है ना, ऐसे मझधार में बैठे हैं, लेकिन हमको जाना है कहाँ, पार जाना है। इसलिए हमें अपनी जहाँ जाना है वहां की चीजों को याद करना है। फिर हमें कर्मेंद्रियों पर भी ध्यान देना है। अभी कर्मेंद्रियों पर ध्यान देने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाबा कहते आंखें कैसी है, धोखा देती है। आज तो मैंने मूली नहीं पढ़ी है। आंखें बहुत धोखा देती है। क्यों आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं भी कुछ होता है तो हमारी आंखें तुरंत जाती है और ज्यादा करके हम सबकी थाली में देखते हैं, इसकी थाली में ये चीज कहां से आई, भले हमको खाना हो नहीं खाना हो, क्योंकि बुद्धि जाती है तो आंख जाती है तो बुद्धि हमारी तुरंत जाती है, तो आंख हमारी खुली रहती है लेकिन कभी बंद भी होती है। लेकिन बाबा ने कहा कि एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था ना, उसने उसकी माँ ने उसको कहा बेटा, छोटा सा था 10 साल का, बोला तुम इस 20 रुपया लेकर के बाजार में जा और मूंग की दाल लाना। उसको बहुत बार बोला मूंग की दाल लाना, लेकिन वो रटते रटते गया, लेकिन बीच में खेल चलता था और खेल बहुत अच्छा चल रहा था, तो 10-15 मिनट उसने देखा, उसको याद आया कि अभी माँ ने मुझे मूंग की दाल लेने के लिए भेजा है, लेकिन उसको मूंग की दाल याद नहीं आई। लेकिन उसने बोला अभी जाऊं, जाते जाते दुकान वाले को कहता चने की दाल दे दो, तो और चने की दाल लेकर के घर में आया, तो उसकी माँ ने कहा बेटा मैंने तेरे को कितनी बार बोला तो मूंग की दाल। तो बाबा कहते हैं मैं आपको ऐसा ही कहता कि मेरे से कनेक्शन जोड़ो, मुझे याद करो, देहधारियों को नहीं याद करो, लेकिन फिर भी आप देहधारियों को याद करते हो। क्यों याद करते हैं बाबा के, हमारा निरंतर योग नहीं चलता है, निरंतर योग नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो दुकान होती है ना, बाबा कहते हैं देखो हमारा कान, हमारी आंखें कभी बंद भी होती है, पर सभी दुकानें होती हैं, कभी बंद होती कभी खुली होती है। आंख जो होती है हम बंद कर सकते हैं, बंद होती है ना रात को, तो मुख भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये दुकान जो है ना, दुकान वो हमारे खुले ही रहते हैं। दुकान कैसा है, अभी सोते सोते भी हम कुछ बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं तो हमारी कान में आवाज जाती है, आधे सोते हैं आधे नींद में हैं, आधे तो हमको लगता है कोई कुछ बोल रहा है, तो हमारा कान कभी बंद नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं दो कान कैसे हैं, कभी बंद नहीं होते, खुला ही रहता है, और ये दुकान ऐसी खुली रहती है जिससे क्या होता है, जब कोई बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसका जड़ कहाँ है, बुरा सुनना, व्यर्थ सुनना। क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो लेकिन कोई व्यर्थ सुना रहा है तो आपकी बिल्कुल, आप भले अपने काम में भी हो लेकिन जरूर वहां कान जाएगा, जाता ही नहीं जाता। तो हमारी ये दुकान जो है ना सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बाबा कहते हैं जब भी हल्ला होता है ना कहीं भी, तो सबसे पहले लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी दुकान में कुछ हो ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो होता है वो हम ये जो कान से व्यर्थ सुनते हैं। बाबा कहते हैं कई बार, बाबा कहते हैं कि परचिंतन की बातें सुनते हैं, व्यर्थ बातें सुनते हैं, तो वो असर करती है, और असर करते करते क्या होता है, हम समझते हैं कि ये सब सुनने से थोड़ी कुछ होगा, और समाचार सुनने से कुछ थोड़ी होगा, ये समाचार सुनना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है उसके असर बहुत समय के बाद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ सुनना वो जड़ है, उसको पहले तो खत्म करनी चाहिए। तो हमें जहां भी ऐसा चलता है, कान तो बंद नहीं करते लेकिन हम जा तो सकते हैं, वहां से उठ तो सकते हैं। तो हमें मतलब कि उसका व्यर्थ सुनना और बंद करना चाहिए। जो व्यर्थ सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया हमें, हमने सुन लिया तो हम चार लोगों को जाके सुनाएंगे, है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक तो कान है, उससे जाता है इनपुट कंप्यूटर में होता है ना, और आंखों से जाता है और फिर मुख से बोलते हैं, इनपुट आउटपुट होता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने को बहुत ही सावधान करना है। फिर जो जीवन में हम देखते हैं कि हमारे को बाबा तो हमेशा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना रहनी चाहिए, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना बहुत दूर दूर वालों से तो हम रखते हैं, क्योंकि हम ग्लोब पर बैठते हैं तो सारे विश्व को तो हम बराबर उसको सकास देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बिल्कुल नजदीक बैठा है जो हमारे डिपार्टमेंट में है या तो हमारे कनेक्शन में जो बहुत नजदीक से आते हैं उनके प्रति हमारी कभी कभी शुभ भावना नहीं रहती है। कभी कभी हमको उसने कुछ बोल दिया तो हमारा अंदर से उसके प्रति शुभ भावना कम हो जाती है, निकल तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है। तो इसलिए शुभ भावना शुभ कामना, इसका मतलब कि उसमें हमें मतलब कि स्वार्थ कि भाई इसको प्रति चलो योग करो, कहते हैं कि मेरे प्रति रोज योग करना, हाँ ठीक है योग करेंगे। तो योग किसी के प्रति करना किसी के प्रति नहीं करना वो तो बराबर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो रहते हैं उसके प्रति हमारी हमेशा शुभ भावना रहेगी, शुभकामना रहेगी, तो वो वाइब्रेशन है वो जरूर ही वो इसको असर करेगा। तो शुभ भावना और शुभ कामना। फिर हमको यहाँ ईश्वरीय मर्यादाएं दिए है, तो मर्यादा युक्त जीवन जीना, कैसा बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, मर्यादा युक्त वाणी चलानी है, बोलना है, तो वो जब हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि इस जीवन में लोग हमको समझते भाई अच्छा है, मन से ईमानदार है, किसी की हम जो भी बातें होती उलट फेल नहीं करते हैं, कोई चीजों में उलट फेल नहीं करते हैं तो अच्छा लगता है। तो हमारी ऐसा नहीं किसी को देखते किसी को देख लेते हैं कि बहुत सुंदर है, आकर्षण है, उसकी वाणी में बहुत ही अच्छा है, उसकी वाणी बहुत अच्छी है, उसको देखने का ढंग अच्छा है, लेकिन हमें उसका मस्तक पर से मालूम नहीं पड़ता कितना ईमानदार है। वो तो महसूस जब होता है तभी मालूम पड़ता है कितना ईमानदार है कितना नहीं, मस्तक पर ये सब कुछ नहीं आता है। इसलिए जब हमें महसूस हो जाता है कि व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो उसके प्रति हमारा आदर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसके पहले उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है। अगर 10 बेईमान है और एक ईमानदार है आप देख लो, तो उसको अंदर से ऐसा होता है। तो अभी वहां रहते थे तो वहां बहुत लोग आते थे, तो एक इंजीनियर था, दो इंजीनियर था, एक इंजीनियर था ना उसको एक ही मकान था, दूसरा इंजीनियर था ना उसको बहुत सारे मकान, क्योंकि कहां भी उसको ड्रॉ करना होता था ना तो बीच में कोई भी किसी का घर आ जाता था, किसी का खेत आ जाता था, तो वो थोड़ा अलग प्रकार से ड्रॉ करके उससे पैसा ले लेता था। दूसरा था ना वो जैसा था वैसे ही करता था, वो कहता है कि अगर आपका जाता है तो गवर्नमेंट आपको दे देता, गवर्नमेंट तो जितना रूल से उतना ही देगा, लेकिन वो व्यक्ति तो बहुत कुछ देता था। तो भाई ने बहुत इकट्ठा किया, सारे मकान अच्छे बनाए, तीन तीन मंजिल के मकान बनाए, बहुत सारे गहने, दो दो उसके घर में कार थी, लेकिन अंत में क्या हुआ उसका मृत्यु अच्छा नहीं हुआ, उसको पैरालिसिस हो गया, इतना पैरालिसिस हो गया कि जीता तो रहा लेकिन 4 साल तक उसके घर वालों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी उसको संभालने में, और संभालते संभालते इतना तनावमुक्त हो गए सब। तो बाबा कहते हैं बेईमानी और ईमानदारी उसमें भी मतलब कि हम बहुत लंबे काल से जो हम ईमानदारी से रहते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं बैठा हूँ सबको देने के लिए, आप क्यों वहाँ कपट फपट सब कुछ करते हैं, कुछ लेने के लिए क्यों ऐसा करते हो, आपको मैं बैठा हूँ मैं देने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हमारा संबंध संपर्क भी ऐसा होना चाहिए जो इतना मर्यादा युक्त हो, और वो तब होगा जब ही हमारा कनेक्शन बाबा से होगा। बाबा से कनेक्शन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा है कि हमारा तन, बाबा के ना तन मन और धन, यहाँ बाबा के पास जब मम्मा आई थी कहते हैं कि वो तो बहुत धनवान थी पहले लेकिन उसके बाद उसके पास धन नहीं था, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं लाई लेकिन महारानी बन गई, और यहाँ ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था वो भी महाराजा, मतलब कहने का मतलब एक के पास बहुत कुछ था एक के पास कुछ भी नहीं था, तो दोनों को बाबा ने कितना मतलब कि इतना धारण युक्त जीवन जीने से उनको इतना फायदा हो गया। तो तन, तन मतलब कि यहाँ हमें बाबा ने कहा है कि तन को जैसे वो तन को ऐसा बनाओ कि मतलब कि जहां भी जरूरत हो वहां मदद करने के लिए तैयार हो तन से, और धन हमारा ऐसा हो कि कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये धन जो है ना बाबा के काम में हम एक कौड़ी यूज करेंगे तो पद्मा पदम गुना वो देगा। अगर कोई व्यक्ति को हम मदद करेंगे तो वो दे ना दे लेकिन उससे तो हमारा हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हमारा जो भी धन है वो भी बाबा के कार्य में यूज होना चाहिए। तन मन और धन, मन जो है उससे भी हम बाबा को योग जब करते हैं तो मन मना भव कहता है बाबा, कभी भी नहीं कहता है कि बाबा कहता है मन को लगाओ मेरे में, अगर मन मना भव हो जाएंगे तो आपका सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो तन मन धन, लेकिन ईमानदार बनने के लिए सबसे बड़ी बात है साक्षीपन। क्यों साक्षीपन? इसलिए कि हम यहाँ जो भी देखते हैं तो हम ये इस आंखों से देखते हैं, हमें पता नहीं है कि इसके हिसाब क्या है, इतने जन्मों में उनको क्या क्या हिसाब होगा। कई लोगों ने बहुत पुण्य कर्म किया है और यहाँ आने के बाद वो थोड़ा ऐसा उल्टा सुलटा करता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन भगवान बैठा है वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है, सबके देखने के लिए उसके पास टीवी भी बहुत बड़ा बड़ा है। कहते हैं ना यहाँ तुम्हारे पास तो टीवी ऐसा है इसमें कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन बाबा के पास जो है आप सोचते हैं ना हम वो भी उनके पास रिकॉर्ड हो जाता है। तो इतना बाबा के पास बड़े बड़े टीवी है, उसमें क्या नहीं देखता होगा कि क्या करता है क्या नहीं करता है, करता है मालूम है ना उसको, तो हमने तो ठेका लिया नहीं है। हाँ जहां हमको लगता है नुकसान हो रहा है वहां हम जरूर उसको थोड़ा बताएं, लेकिन जहां हमारा कनेक्शन ही नहीं है वहां हम साक्षी भाव से देखते रहे, क्योंकि वो ठेका लेने वाला बहुत बड़ा है, उसकी परख शक्ति में परसेंटेज नहीं, उसने सबको परख करके अपना बनाया है, आज कुछ हो सकता है कल अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए साक्षी भाव, जितना हमारा साक्षी भाव होगा उतना हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, और ड्रामा को भी याद करेंगे, और साक्षीपन की भावना से क्या होगा कि हम सबको माफ भी कर सकते हैं। तो माफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमको ये याद रहेगा। तो तन मन धन बाबा कहते हैं वो भी मेरे में लगाओ। दूसरा है कि साक्षी भाव, ट्रस्टीपन, ट्रस्टीपन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी ने कुछ हमको रखने के लिए दिया है तो ऐसी ऐसी हालत में उसको देना चाहिए। अगर हमको उसने 500 रुपया दिया 100-100 की नोट, लेकिन हम समझे किसी को जरूरत पड़ गई तो हम 10-10 की नोट 500 करके बैठेंगे, उसको तो ना संकल्प चलेगा, क्योंकि हमारे पास माताएं आती है ना तो कहती है कभी कभी कि बहन जी ये 5000 रुपया आप थोड़े समय के लिए रखो एक मास के बाद, क्योंकि हम कहाँ लेने जाएंगे तो हम रखते हैं। तो ऐसी ही जब हमको दे जैसे दिया वैसे ही हम उसका पैकेट में जैसे उसने दिया वैसे देते तो हमारे पर उसको बहुत विश्वास आ जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जब भी हम 10-10 करके देंगे तो बोला ये क्या हो गया, ये आपने क्या किया। छोटी सी बात है लेकिन छोटी छोटी बातों से हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो है हमारी ईमानदारी करने की मतलब बातें हैं, लेकिन उसमें थोड़े प्रश्न है, थोड़े प्रश्न बताऊं क्या? सबसे पहला सवाल है कि क्या अच्छा इंसान को आप जैसा होना चाहिए? अच्छा इंसान जिसको हम ईमानदार कहते हैं, जिसको अच्छा मानते हैं, उसको हमारे जैसा होना चाहिए? क्या हम अपने को ईमानदार समझते हैं? क्योंकि अगर ही हम देखते हैं कि हमारे में क्या क्या ईमानदारी है नहीं है, क्योंकि हम अपने को बराबर जांच सकते हैं, कोई हमको बोले ना बोले, कोई हमको बड़ा ईमानदार समझ लेकिन हम अंदर से ना भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप अपने को ईमानदार समझने के लिए आप समझते हो कि मैं ईमानदार हूँ, मतलब अपने को देख करके। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम सबका सम्मान करते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं कम से कम उसका रिस्पेक्ट करें, उसको दो शब्द अच्छा बोले, ऐसा हो सकता है? तो सबका सम्मान करते, कभी किसी ने हमको गाली दे दी और हमारे सामने आए तो हम भी ऐसे ही सोचेंगे इसने मुझे किया था ना, उसके सामने देखो ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बाबा के घर में हम रह रहे हैं तो सबको सम्मान हम देते हैं तो हम समझते हैं कि सबको सम्मान हम दे सकते हैं, तो वो अपने को चेक करो। तीसरा सवाल है क्या हम सबको समान भाव से देखते, समान भाव से माना कोई गरीब है, कोई पैसा वाला है, कोई की स्थिति अच्छी है, कोई की स्थिति अच्छी नहीं है, कोई को पोस्ट बहुत है, कोई को पोस्ट नहीं है, तो हम उनको आत्मा समझ करके उनसे व्यवहार करते हैं। या बहुत बड़ी पोस्ट है तो उसको उसको उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी रीति से बात करते हैं, जिसके पोस्ट ही नहीं उसको बोलते इसको क्या काम है, हमारे को काम में आएगा नहीं। तो ऐसे स्वार्थ वृत्ति तो नहीं रहती है कि अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार, जो देने वाला है उसके साथ अच्छा व्यवहार, नहीं देने वाले के साथ ऐसा व्यवहार। तो बाबा के सभी को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके हम व्यवहार करते हैं तो अपने को देखो। दूसरा है कि चौथा सवाल है कि हम सभी का भला सोचते हैं कि अपने वालों का भला सोचते हैं, दूसरे वालों का भला नहीं सोचते। कभी ईर्ष्या आ जाती है, कोई को अच्छा ऊपर जा रहा है, इसकी पोस्ट पोजीशन बढ़ रही है, उसको दादियां बुलाती है, तो हमें ऐसा तो नहीं होता है कि इसको तो दादियां बुलाती हमको नहीं, तो भला सबका सोचते हैं। फिर हमको जो जिम्मेवारी मिली है तो हम जिम्मेवार है ऐसा समझते, किसके जिम्मेवार, जो हमको डिपार्टमेंट मिला है, जो हम दादी ने जहां हमें रखा है उसके जिम्मेवार बनकर के। कभी क्या होता है हम अपनी जिम्मेवारी छोड़कर के दूसरे की जिम्मेवारी संभालने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और अपना तो नहीं देखते हैं दूसरे का। तो सबसे पहले अपनी जहां हम होते हैं उसकी संभाल करनी है। क्यों? क्योंकि आखिर तो हम जिसके साथ रहते हैं उसके वफादार भी रहना है, और बाबा भी तो कहते हैं ना कि वफादारी उसकी करो है। हम दूसरे के साथ जाकर के सब कुछ करेंगे तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं अपने जहां आप रहते हो वहां के जिम्मेवार, वहां जो भी चीजें करनी वो करनी है, और दूसरी चीजें करके हम नाम मान सम्मान तो खा लेंगे, लेकिन वो नाम मान सम्मान कब तक, जब उसकी जरूरत है तब तक। जैसे उसकी जरूरत पूरी हुई, उसको दूसरे लोग मिल गए तो छोड़ो इसको, ऐसा ही कहेंगे। तो जिम्मेवार। छठा सवाल है, क्या हम सबकी मदद करते हैं, किसी की मदद करते किसी की नहीं करते, किसी को कहते उसको मदद करने की जरूरत नहीं, उसने हमको ऐसा किया था, नहीं। सबकी मदद मतलब जो भी आप में अगर यथार्थ शक्ति है, आप में अंदर क्वालिटी है, आप कर सकते हो और आपके पास समय है तो आप उसकी मदद कर सकते हो। दूसरा है कि क्या हम सबकी बात है, हम सबको गुस्सा या देहाभिमान या मैपन आता है। बाबा कहते परसेंटेज में कितना आता है, उस परसेंटेज को धीरे धीरे बाबा कहते हैं कि अच्छी बातों में परिवर्तन करो। ये जो गुस्सा अभिमान देह अभिमान में अपन, वो धीरे धीरे उसका परसेंटेज कम कर दो। दूसरा है क्या हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, जो भी हमने गलतियां की उसे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, तो अपने को चेक करना है। दूसरा है कि कभी कभी किसी की गलती हो जाती, कभी हमारी भी होती है, लेकिन हम किसी की गलती हो गई तो हम माफ करने के लिए तैयार है। अगर माफ करने के लिए तैयार है तो उनके साथ हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा, उसका बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो माफ करने के लिए तैयार है, और कभी कभी हमने गलती कर ली है तो किसी को हम माफी मांगने की हम संकोच तो नहीं होता है। दूसरा है कि ये सब देख करके ऐसा लगता है कि हम कितने ईमानदार है, उसके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। बाबा तो कहते हैं कि संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है, वो मंजिल से पहले ये मंजिल तो पास करनी ही पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चे हैं उसको फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनकर के क्या बनना है, देवता बनना है। तो सदैव हम एक लक्ष्य भी रखते हैं, आपने मेडिटेशन हॉल में देखा होगा सामने लक्ष्मी नारायण का एक बुत बना के रखा है ना, और वो इतना अच्छा है कि आप जब उस वहां बैठो ना, योग कराने बैठो तो आपको लगेगा इतना सुंदर लगता है। तो सदैव अपने सामने एक ऐसा सर्वगुण संपन्न मूर्ति सामने ही रखो और अपने को कंपैरिजन करते चलो। हम अपने को जब कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि हम कितने कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इसे लोगों की कंपैरिजन मत करो कि इससे हम अच्छे हैं इससे हम अच्छे हैं, नहीं उसकी करो, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कमा सकते हैं। ओम शांति।
सिखलाता है राजयोग,
दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता।
दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है
करता है।
उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है।
उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। खिलाता है राजयोग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है।